Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे एक लंबी सी लकीर खींची और अपने सभी विद्यार्थियों से कहा कि इस रेखा को, इस लकीर को बिना मिटाए हुए तुम इसे छोटा करके दिखाओ। अब सभी विद्यार्थी सोच में पड़ गए कि बिना मिटाए इसे कैसे छोटा किया जा सकता है। शांति का माहौल था, गहन चिंतन में डूब गए सभी विद्यार्थी। थोड़ी देर के बाद एक विद्यार्थी उठा, चौक पीस उठाया उसने और उसी रेखा के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी। तो बिना मिटाए ही उसने एक लकीर खींच के उस लकीर को, जो पहले खींची गई थी शिक्षक के द्वारा, उसे छोटा कर दिया। शिक्षक महोदय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसका सार समझाते हुए कहा कि देखो, जीवन में तुम्हें अपने आसपास बहुत सारे सफल लोग दिखाई देंगे, लेकिन सफल लोगों को देख के ईर्ष्या मत करना, जलना मत, उनकी टांग खींचने की कोशिश मत करना, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा योग्य बनने की कोशिश करना, क्योंकि जहां योग्यता है वहीं सफलता है। और यदि आप ईर्ष्या करेंगे तो शायद ईर्ष्या द्वेष में ही आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप उनसे आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन इतिहास आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद नहीं करेगा। इसीलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना। इसीलिए चार बहुत सुंदर लाइनें कही गई हैं। किसी ने कहा है कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत हमेशा साथ देती है। तो यदि हमें सफल होना है तो अपने आप को काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए, क्योंकि यही सफलता का एक सुंदर मंत्र है। आइए इसी सुंदर मंत्र के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक यू।
काबिलियत पे क्या कहेंगे भ्राता जी? कई लोग सोचते हैं कि किस्मत में भगवान ने जो लिख दिया है वही मिलेगा, इसलिए हम काबिल हो ना हो किस्मत का होना जरूरी है।
जो लोग दूसरों की सफलता को देख के ईर्ष्या करते हैं
जी,
वो वास्तव में अपनी योग्यताओं को बढ़ाते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं इनको रोका जाए तो शायद हम ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि किसी मनुष्य की सफलता से यदि हम ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो हम मनुष्य से नहीं जलते, उसकी सफलता से जलते हैं। पर जिससे हम जलते हो वो हमारे समीप कभी नहीं आएगी। जिसको सफलता प्राप्त करनी हो वो दूसरों की सफलता को अप्रिशिएट करे, उनके भाग्य को अप्रिशिएट करे, उनको भी धन्यवाद दे, उनकी महिमा करे, वाह कितने भाग्यवान हो तुम, तो हम सफलता का गुणगान करेंगे और ये सफलता हमारे पास भी आ जाएगी। सत्य यही है कि हमें दूसरों को आगे बढ़ता देख कर अपने को और योग्य बनाना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि हम भी और ज्यादा सफल होंगे जीवन में किसी भी फील्ड में। मान लो एक बिजनेसमैन ही है और उसको अपने बिजनेस के स्किल्स को बहुत बढ़ा देना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, मुकाबले वो सिस्के के वो अपनी इनर पावर्स को ईर्ष्या द्वेष में व्यतीत करे, जलता रहे, इससे कुछ नहीं होगा।
लेकिन भ्राता जी, होता नहीं यही? हाँ। कि यदि बिजनेस की बात आपने कही है तो हाँ। देखा यही जाता है कि जो एक समान रूप से जो चलने वाले बिजनेसमैन है बाकी की जड़ें काट देते हैं और खुद स्थिर होकर के आगे बढ़ना पसंद करते हैं। शायद बिजनेस का एक रूल ही बन गया।
हाँ, इसलिए उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि हम दूसरों की जड़ें यदि काट रहे हैं तो हमारी भी जड़ें कट जाएंगी, क्योंकि कर्म सिद्धांत यही कहता है कि हम किसी की जड़ें न काटें। जैसा हम दूसरों के लिए करेंगे वैसा हमारे लिए भी होने जा रहा है। हम दूसरों को मदद करें अच्छी से अच्छी। मान लो दो पड़ोसी हैं बिजनेसमैन, उसकी दुकानियां हैं, उसकी दुकान पास में है, बड़ी दुकानें हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बिजनेस स्किल का भी लेन देन करते, आदान प्रदान करते हैं, तो कितना अच्छा माहौल बनता है और दोनों ही आगे बढ़ेंगे। और जहां एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे दोनों को कष्ट होगा। इसलिए बहुत प्यार संबंधों में रखना, अपने स्किल्स को बढ़ा देना। और एक बहुत बड़ी चीज ये भी है, कहीं भाग्य के आधार पे हमें जीना नहीं चाहिए, पर कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि भाग्य के आधार पे मनुष्य को बहुत कुछ मिलता भी रहता है। भाग्य ये कहीं लिखा हुआ नहीं, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म वही हमारे भाग्य हैं, उसके आधार पे कईयों को मिलता भी रहता है। तो हमने देखा हमारे पास बहुत अच्छे दो भाई भाई बिजनेसमैन, दोनों की दुकानें बिल्कुल पास पास, दोनों आए, दोनों में बहुत प्यार, दोनों एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करें, और दोनों के ही मन में ये था कि हमारे भाग्य में बहुत अच्छा है, हमें सब कुछ अच्छा मिलता रहता है। इतना उनको विश्वास था कि अगर दूसरे की दुकान पर ज्यादा ग्राहक आ रहे तो इसको ईर्ष्या नहीं हो रही, भाई उसका भाग्य इतना अच्छा है तो दूसरी बार उसकी दुकान पे भी बहुत ग्राहक आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव होने से हमें हर जगह सफलता मिलती है। हमें अपनी योग्यताओं को तो निरंतर बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आज हमारी योग्यता यदि हमें प्रैक्टिकल में अपना रूप नहीं दिखा रही है तो कल अवश्य दिखाएंगी। योग्य व्यक्ति की योग्यताओं का यूज अवश्य होता है, ये सृष्टि का, इस वर्ल्ड क्रिएशन का एक इटर्नल विधान है, लेकिन मनुष्य को थोड़ा इंतजार भी करना होता है, कभी कभी धैर्य चित्त भी होना चाहिए, अपने को योग्य बनाना चाहिए इस विश्वास के साथ कि हमारी योग्यताएं यूज होंगी।
एक विशेष बात जो मैं किस्मत की बात कह रहा था भ्राता जी, कई लोग किस्मत के आधार पे ही बैठे रहते हैं, किस्मत में होगा तो प्राप्ति होगी, वो मेहनत को गौर रखते हैं, काबिलियत को गौर रखते हैं।
किस्मत है जो कर्म हम करते हैं उसका फल, तो अगर अब ही हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा कैसे? तो हम अपनी किस्मत को अच्छा बना ही नहीं पाएंगे। पीछे जो हमने किए उसका हमें मिलता रहेगा, लेकिन हमें क्या पता पीछे हम क्या कर आए हैं। इस जीवन में भी मनुष्य जो कुछ करता है जरूरी नहीं उसका साथ साथ फल मिलता हो, थोड़ा देर से मिल सकता है, 10 साल बाद मिल सकता है, 20 साल बाद मिल सकता है, नेक्स्ट बर्थ में मिल सकता है। इसलिए किस्मत के आधार पे रहने वाले तो कभी आगे बढ़ नहीं
पाएंगे। ग्रह दशाओं वाली बात सही है, बैठे रहना चाहिए या कुछ एफर्ट्स
करने चाहिए, अच्छे प्रयास करने चाहिए। और ग्रह दशाएं जो भी ये नक्षत्रों का इफेक्ट है होता है, हमने भी देखा है, उसको समाप्त करने के लिए जो भी पुरुषार्थ हो सके, राजयोग से भी वो अच्छा होता है, और भी जो छोटे मोटे विधि विधान करने हो वो करके उसी से मुक्त होके एक अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए।
तो आपके जीवन में क्या कभी ऐसा रहा कि साधनाओं में करते करते सफलता नहीं मिली तो थोड़ा निराशा का भाव आया या लगा कि अरे अब आगे क्या होगा, कुछ ऐसा रहा जहां से आपको निकलने में थोड़ी सी कठिनाई?
मेरा जीवन अलग तरह का रहा है और मेरी मेंटेलिटी दूसरी तरह की थी। साधनाओं का पथ तो सबसे कठिन पथ है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति एकाग्र नहीं हो सकता, लेकिन मैंने 69 से ही बहुत अच्छी मेहनत कर ली थी और पूरा 69 ईयर मैंने अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने में लगा दिया था। और मुझे याद है कि 8 मास की मेहनत से मैं अपने कार्य में संपूर्ण सफल हुआ था, और फिर तो एक पैटर्न मुझे प्राप्त हो गया था ना, एक बहुत सारे अनुभव प्राप्त हो गए थे क्योंकि मैंने उसको अपना एक रिसर्च पॉइंट बनाया हुआ था। मन कहाँ भटकता है, क्यों वहां जा रहा है, उसको वहां से रोकना है, बुद्धि को स्थिर करना है। तो ये 8 मास की साधना ने मुझे इतने अच्छे अनुभव दे दिए थे। हालांकि 8 मास कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत कर ली थी उसमें, जो त्याग उसके लिए जरूरी होता है वो सब कर दिया था। तो मेरा पूरा जीवन बहुत अच्छा हुआ और साधनाओं के फील्ड में मुझे निराशा जैसी कोई बात नहीं हुई।
यदि मैं 3 शब्दों में आपके पूरे जीवन के अनुभव से, निचोड़ से यदि जानना चाहूं कि सफलता के 3 सूत्र आपके जीवन के क्या रहे हैं, वो हमारे दर्शकों के सामने रखें तो
मैं कह सकता हूँ, एक तो बहुत ज्यादा दृढ़ता अपने लक्ष्य के प्रति
जी।
मैं सदा ही एक अच्छे लक्ष्य को लेकर चला हर फील्ड में, और उस लक्ष्य के प्रति अपने को पूरी तरह डेडिकेट कर दिया। लक्ष्य को पाने के लिए मैंने हमेशा एक प्लानिंग भी बनाई। दूसरी बात थी एक सुंदर प्लानिंग, एक प्रैक्टिकल प्लानिंग, और प्लानिंग भी ऐसी जो की जा सकती है और जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ा काम करेगी, उस प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह फॉलो करना। और तीसरी चीज थी बाबा में बहुत ज्यादा विश्वास, उसकी शक्तियों को यूज करना, उसको यूज करना, अपनी शक्तियों को यूज करना, स्वमान की शक्तियों को यूज करना। तो इन 3 सूत्रों से हर फील्ड में मन चाही सफलता मिलती रही। मुझे अपने जीवन से बहुत संतुष्टि है। जैसा मैंने एक शब्द ही कहा कि मैंने जो चाहा वो पाया है। मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कुछ चाहता हूँ और वो मुझे न मिले। जैसे पहले से ही वो सब तैयार रहता है, ऐसे अनुभव हो गए।
बिल्कुल प्रताप जी, कोई ऐसा लक्ष्य जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि आपने साधना के मार्ग में भी रखा, कि ये अब मेरा लक्ष्य है, इसे मुझे अचीव करना है, और आपने इन तीनों के माध्यम से उसे अचीव किया हो, कोई ऐसा लक्ष्य जो अनुभव के रूप में सुनाना चाहिए?
मेरे लक्ष्य बहुत पुराने समय में जो मैं बनाया करता था जब मुझे उनकी जरूरत थी, वो हमारे दर्शकों को सबको तो काम नहीं आ सकते, मुझे पहला लक्ष्य होता था मुझे एक दिन में अपने योग के चार्ट को इतने तक पहुंचाना है, और मैं लक्ष्य बनाता था 15-15 दिन के, कि 15 दिन में मेरा योग का चार्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा। इन 15 दिनों में मैं ये स्वमान को बहुत ज्यादा अपने अनुभवों में लाऊंगा, और एक दिनचर्या भी सेट कर लेता था कि इस कार्य में ये अभ्यास करेंगे, इस कार्य में ये अभ्यास होंगे। एकांत में बहुत ज्यादा लेता था, और एक्टिव होने के कारण कार्य में बिफोर टाइम पूरे कर लेता था अपने, और फिर मैं पहाड़ियों में चला जाता था। तो मेरे लक्ष्य तो थे अपने योग की जो स्थिति होती है, जिसे हम सिंपल भाषा में योग का चार्ट कहते हैं, उसको बहुत बढ़ाने का, और वो सदा ही प्राप्त होते थे।
बिल्कुल प्रताप जी, कोई ऐसी सिद्धि की भी बात कि आपने लक्ष्य रखा हो कि मुझे ये सिद्धि हासिल करनी है, उसके लिए आपने प्रयास किया हो और सहज आपको सफलता मिली?
अब मैं वैसी सिद्धियों की तो बात यहाँ नहीं करूँगा, वो तो सूक्ष्म चीजें होती हैं, लेकिन जैसे मुझे गीत लिखने हैं, फटाफट वो चीज आ गई, लंबा समय नहीं लगा।
व्यक्ति कितनी मेहनत करता है सफल होने के लिए।
मुझे लेख लिखने हैं अच्छे अच्छे, तो थॉट्स बहुत तेजी से मेरे पास आने लगे, और बस मेरा यही होता था कि बस 5-7 मिनट में उसकी एक रूपरेखा तैयार की, 5-7 बातें लिखी, इन पे लिखना है, और जैसे ऊपर से वो सुंदर फ्लो आने लगा। तो ये सब बहुत अच्छे अनुभव होते थे कि किसी भी चीज के लिए फिर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं रही। मैं इसको गॉडली ब्लेसिंग्स भी कहूंगा, लेकिन अपने ही मन और बुद्धि की प्योरिटी इसमें सबसे बड़ा काम करती है।
बिल्कुल, मतलब सफलता के लिए ये भी एक आध्यात्मिक
मन बुद्धि की प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। चाहे एक वैज्ञानिक किसी विशेष फील्ड में रिसर्च वर्क कर रहा है, अगर उसका मन बुद्धि बहुत प्योर है तो उसे फटाफट इंट्यूशंस आएंगे, वही चीजें टच होंगी जो उसको चाहिए, और बहुत जल्दी वो अपने फील्ड में सफल होगा।
भ्राता जी, इससे संबंध में एक लास्ट बात मैं जानना चाहूंगा। कल भी शायद हम लोगों ने चर्चा की थी कि लगातार असफलता के बाद भी हमारी मन की जो स्थिति है स्थिर बनी रहे, जैसे आपने कहा कि चलिए आपके जीवन में असफलता वाली बात नहीं रही, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि लगातार असफलता के बाद एक गिरावट की स्थिति आ जाती है, तब भी एक मनोस्थिति बहुत शक्तिशाली बनी रहे, सफलता का जो एक आशा का या उम्मीद का दीप है जला रहे, उसके लिए कोई विशेष सूत्र हो तो?
एक तो हम अपनी स्टडी पर बहुत ध्यान दें, ज्ञान की स्टडी हमारे विचारों को नई दिशा देती है, क्योंकि निराशा में भी विचार ही निगेटिव हो रहे हैं ना, अब उन विचारों को पॉजिटिव करना जरूरी है। तो हम जब ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करते हैं या उनको सुनते हैं क्लास में जाके, तो उसमें ऐसे सुंदर विचार हमें मिल जाते हैं जो हमारे मन को सुंदर दिशा प्रदान करते हैं, जो निराशा को समाप्त करते हैं। मान लो हमने यही सुन लिया, बाबा कह रहे अरे बच्चे चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर है, और जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, जीवन में नई उमंग आ जाएगी, जो हार के कारण निराशा हो गई है उससे हम बच जाएंगे। और दूसरा मैं कहूँगा कि सवेरे उठकर आधा पौना घंटा एक बहुत अच्छा मेडिटेशन करें, और एकांत में विचरण करें, जिससे हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, छुपे हुए सुंदर विचार हैं, वो उस एकांत में जागृत होंगे। तो स्वमान से शुरू करें, फिर सुंदर विचार हमारे मन में आने लगेंगे, और सुंदर विचारों से जो एनर्जी वाइब्रेट आउट होगी वो पुनः हमें सफलता की ओर ले चलेगी। ये दो सूत्र
जरूर सभी अपना। पोखरियाल जी कहते हैं कि डियर सूर्य भाई जी, ओम शांति, आई एम राइटिंग यू फ्रॉम काठमांडू नेपाल, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं आए, मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं हमारे प्रशांत पोखरियाल जी,
मतलब ये सतयुगी लाइफ चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा संसार आने ही वाला है जहाँ किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। सचमुच समस्याओं को मनुष्य ने स्वयं क्रिएट किया है, अपने मनोविकारों से, अपने व्यसनों से। कल मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति भी आ रहा, बड़ा गिड़गिड़ा रहा, बहुत चोट लग गई थी हाथ में, सूजन हो गई थी। डॉक्टर ने पूछा क्या किया, साहब मैंने शराब पी ली थी और लड़ाई में मार पीट कर दी, उसने मुझे मारा है। तो डॉक्टर उसे कह रहे थे अब शराब छोड़ेगा तब दवाई दूंगा, क्या बस आज से कभी नहीं पीऊंगा, वो तो हम जानते हैं वो उनकी आदत बनी हुई है, लेकिन इन चीजों ने समस्याओं को क्रिएट किया है। उसका इतना सूझ गया था कि वो उससे दुखी था। अगर वो अच्छा व्यक्ति हो तो न शराब पिए न लड़ाई झगड़े। तो अगर हम सचमुच समस्याओं से मुक्त जीवन चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि समस्याओं से मुक्त जीवन नहीं हो सकता है, होता है, बहुतों का है। न बीमारियां परेशान करती हैं, संबंधों में बहुत स्वीटनेस है, बच्चे और माता पिता पति पत्नी सब आज्ञाकारी एक दूसरे के, सब चरित्रवान, बिल्कुल घर में शांति सुख आनंद प्रेम छाया रहता है। उसका कारण यही है। इसमें करना पड़ेगा स्नेह, सहयोग और सम्मान एक दूसरे के लिए। दूसरा, अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की प्रैक्टिस के लिए समय दें अपने को, अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव कर लें और लगातार स्वमान की सुंदर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि हमारे विचार महान रहें और हम समस्याओं को समस्या माने ही नहीं। कई बार ऐसा होता है समस्याएं होती नहीं, लेकिन मनुष्य समस्या फील करता है। हमारा सोचना इतना ब्रॉड हो जाए, इतना हम विशाल हो जाएं कि छोट-छोट चीज, ये तो रूटीन है, तो चलता ही रहता है। वी हैव टू एंजॉय एवरीथिंग, ऑल सिचुएशंस। तो ऐसा जीवन बनाया जा सकता है।
बिल्कुल, मतलब एक विचारों में परिवर्तन की जरूरत है और साथ ही आध्यात्मिक स्थिति थोड़ी सी ऊंची हो। आगे भी ये पूछते हैं व्रता जी, कहते हैं कि मेरे परिवार में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, इसका क्या कारण है और कैसे निवारण हो इसका?
हाँ, ये भी कईयों के साथ आजकल हो रहा है। एक जाती है दूसरी आती है तो फिर भी अच्छा है, कईयों के साथ तो एक साथ अनेक समस्याएं हैं। सारा सुना देते हैं लोग, हमारी नौकरी भी छूट गई, बिजनेस धंधा बिगड़ गया। समस्याएं कभी अकेली नहीं आती, वो सचमुच किसी के जीवन में तो बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो आज तक के जो अनुभव हैं, थोड़ा सा अपने को उनसे डिटैच करके, चलो भाई ये बैड टाइम आ गया है, समस्याएं आ गई हैं, चाहे किसी ने भी क्रिएट की हो, और कभी कभी बिना क्रिएट किए भी आ जाती हैं। लगता है कहीं से आ गई, हमारा दुर्भाग्य जागृत हो गया, कोई बुरे कर्म हमारे सामने आ गए। फिर लोग ये कहते हैं कि इन्हें कुछ करा वरा दिया होगा, ये जो कुछ भी है। उसके लिए बस एक ऐसा 3 मास का प्रोग्राम बनाएं कि रोज सवेरे उठ के बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करना है, स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अगर 3 बजे उठ सके तो बहुत अच्छा, और 3 से 8 बजे तक के 5 घंटे को स्पिरिचुअल बना दें, सुंदर विचारों में व्यतीत करें, अच्छी साधनाएं कर लें। हम जानते हैं कि जब ऐसा समय आता है तो मन मनुष्य का भटकता है, वो एकाग्र भी नहीं होता। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्लासेज हैं, योग की कमेंट्री हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल भी सवेरे से सुंदर सुंदर प्रोग्राम देने लगता है। इन सब की मदद से ये 5 घंटे अच्छी स्थिति में व्यतीत करें, चाहे नहाए धोए, किचन में काम भी करें, लेकिन अच्छी फीलिंग्स के साथ करें। तो ये सवेरे का जो सुंदर टाइम होगा, मुझे नहीं लगता कि 3 मास से ज्यादा समय लगेगा। 21 दिन के बाद ही बहुत कुछ ठीक होने लगेगा और तेजी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस चीज की बहुत जरूरत होती है कि परिवार में सभी थोड़े पॉजिटिव हो जाएं। ये नहीं गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को दोष आरोपित कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान करने में लगे हैं। सारे परिवार को मिलकर बैठकर इस तरह विचार करने चाहिए, भाई ये सब आया है, अब हमें एक साथ मिलकर इस समस्या को फेस करना है, इसे लड़ना है, इसे पार होना है। कौन इसमें क्या कोऑपरेट कर सकता है, ये एक विचार कर लेना चाहिए। और कोई मान लो कोऑपरेट न भी करे तो विघ्न क्रिएट न करे, अपने चित्त को शांत करे और इस तरह के अभ्यास करे तो बेड़ा पार हो जाता है।
चलिए व्रता जी, उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रशांत जी की जीवन से भी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जीवन में समस्याएं ही ना हो, और यदि ऐसा हो तो बहुत बेहतर होगा। एक दूसरा मेल हमारे पास आया है व्रता जी कि मेरा 21 साल का बेटा है, एक ही है, 21 साल का है, उसको कुछ तकलीफें थी, चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इसको कैंसर है और कैंसर भी लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, अब उसकी मृत्यु निश्चित है। हम इससे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्या इस बच्चे को कोई शक्ति बचा सकती है, क्या अध्यात्म और योग से कुछ मदद मिल सकती है?
हाँ, देखिए इनकी समस्या तो नो डाउट बहुत ही,
एक ही बेटा है, जवान है,
छोटी आयु की है, और कैंसर के बारे में, हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, नो डाउट हम इसे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने जैसे जीवन दिया है अनेकों को, लेकिन अभी तक ये कैंसर के बारे में पहले ही पता नहीं हो पाता। बस जिसको भी चेकअप हो यही समाचार सुनने को मिलता है कि लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, लेकिन इन्हें निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अभी से उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। मैं ये बात अंडरलाइन करके कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी विजन बनाए कि नहीं 3 मास में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और राजयोग इन्होंने न सीखा हो तो अच्छी तरह जाकर सीख लें। स्पिरिचुअल पावर सब कुछ कर देती है। अगर भक्ति का मृत्युंजय महामंत्र कईयों को मृत्यु के मुख से बाहर निकाल सकता है, मैंने देखे हैं केस, अपने जीवन में देखे 2 केस, के महामृत्युंजय मंत्र का अच्छे विद्वान पंडितों ने जब अच्छा जाप किया विधि विधान पूर्वक, तो बच्चे जिनकी मृत्यु डिक्लेयर्ड थी वो उससे बाहर आ गए और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो राजयोग तो उससे बहुत बड़ी चीज है, मैं कहूंगा उससे 100 गुनी अधिक पावर है राजयोग में, क्योंकि इसमें राजयोग माना भगवान की शक्तियां हमारे साथ काम करने लगती हैं, वो तो केवल मंत्र शक्ति है, उसमें तो हमारी कुछ डिमांड है, कुछ प्रेयर है। तो एक तो विजन बनाए कि 3 मास में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चार्ज करके उसको पानी पिलाएं अच्छी तरह से, भले 10 बार पिलाएं, बहुत भावना के साथ पानी को चार्ज करें, पानी को दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, भले थोड़ा थोड़ा पानी पिए, 1/3 गिलास ही पिए थोड़ा सा, ताकि 10 बार पी सके, ये काम बहुत अच्छी तरह करना है। दूसरा, उसके ब्रेन को एनर्जी देना, जो हम हमेशा विधि बताते रहते हैं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, हाथ मलते हुए याद करें 2-3 बार और उसके ब्रेन पर ऐसे रख दें
जी,
क्योंकि बीज हर बीमारी के ब्रेन में ही होते हैं, और संकल्प करें इससे इसका ब्रेन परफेक्ट हो जाए और ये जो कैंसर है इसको नष्ट करे, एनर्जेटिक हो जाए, इसको नष्ट करे, ये तीसरी बात। और चौथी बात, इन्हें अपने बच्चे के लिए उसको भी राजयोग सिखा दें, अब वो भी राजयोग मेडिटेशन करे, और ये भी करें 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, मतलब ये 3 मास तो अपने बच्चे के लिए डेडिकेट कर दें, चिंता के बिना, चिंता की जरूरत नहीं, चिंता से नेगेटिव एनर्जी फैलेगी, उसको भी इतना खुश कर दें, उसको बिल्कुल अंदर से आवाज आने लगे बस मैं ठीक हुआ कि हुआ, ये बीमारी गई की गई, और घर में भी खुशी का माहौल बना दें, उदासी का नहीं, ये अंडरलाइन करने की बात है इनके लिए। ये केस ही ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति से यदि ये करेंगे तो वी आर होपफुल कि 3 मास में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम सब की ब्लेसिंग है। हम अपने समाधान परिवार से भी कहेंगे इस बच्चे को 10 मिनट रोज योगदान से भी दिया करें।
पता जी, क्या कोई ऐसा केस है जो राजयोग के अभ्यास से ठीक ऐसी ही कंडीशन में कोई पहुंचा हुआ पेशेंट रहा हो, राजयोग की प्रैक्टिस की गई हो और इससे वो बाहर आ गया हो?
पंजाब के एक सरदार जी का अनुभव तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, पहले भी सुनाया, बोन कैंसर था, हड्डियां गल गल के गिरने लगी थी और इतनी पीड़ा थी कि उसके परिवार वाले भी कहते थे ये मर जाए तो सुखी हो जाए, इतनी पीड़ा थी उसको। 3 मास उसने ये सब अभ्यास किए, उसने क्या किए, उसकी बहन ने किए और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं, इम्पोसिबल कुछ नहीं है, और हमें विश्वास है शिव बाबा इनको नया लाइफ जरूर देगा।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आशा का दीप आप जला देते हैं सभी के मन में अनुश्चित रूप से। जो भी जिन्होंने ये मेल हमें किया है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हम सबकी दुआएं रहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका बच्चा ठीक हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, समाधान परिवार में पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, भ्राता जी ने आज भी याद दिलाया है कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 10-10 मिनट के लिए हम विशेष सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते ही हैं। आप सब सिंसियरली इस चीज को कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, और जब व्यक्ति बिल्कुल असहाय महसूस करता है, जैसे इस लास्ट केस में भी आपने देखा, ऐसे में यदि हम किसी के लिए दुआएं मांग सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं जिसका सचमुच बहुत गहरा असर है, तो हम सबको सचमुच जरूर करना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो चीज की जाती है उसका फल बहुत गुणा प्राप्त होता है, और ये तो हमारा सहयोग बैंक है ना, हम सब ने बहुत खुशी से ये खोला हुआ है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग ऐसी आत्माओं को दें योग का, ताकि वो भी अपने जीवन में परेशानियों से बाहर आ सकें, जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। तो सीरियसली सिंसियरली इस चीज को कीजिएगा ताकि आपके जीवन में भी सबकी दुआएं जमा होती चलें। आज के लिए समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।